Welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I'm Arjun Chowdhury and with me is my co-anchor in Hindi, Amrish Saxena.
नमस्कार आर्थिक खबरों के कार्यक्रम मार्केट मंत्र के ताजा अंक में आपका स्वागत है. आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हम हमेशा की तरह देश और दुनिया की चुनी हुई आर्थिक कारोबारी और शेयर बाजार से जुड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं. हमारे साथ खबरों पर चर्चा के लिए स्टूडियो में आमंत्रित हैं आर्थिक विशेषज्ञ सुषमा रामचंद्रन. सुषमा जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है.
थैंक यू अमरीश.
आइए आरंभ करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइंस है जिसे लेकर मौजूद हैं अर्जुन चौधरी.
बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज एंड इन पॉजिटिव टेरिटरी. सेंसेक्स एड्स 234 पॉइंट्स. निफ्टी क्लोजेस अबव 23,700. नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस प्रोजेक्ट्स इंडियाज रियल जीडीपी टू ग्रो एट 6.4% इन द ऑनगोइंग फिस्कल ईयर. एंड ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस राइज. ब्रेंट क्रूड ट्रेड्स एट $77.03 पर बैरल.
बेंचमार्क घरेलू शेयर बाजारों में तेजी दिखाई दी. सेंसेक्स 234 अंक बढ़ा. निफ्टी 23,700 के ऊपर बंद हुआ. राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने देश की रियल जीडीपी में मौजूदा वित्त वर्ष के दौरान 6.4% की वृद्धि का अनुमान व्यक्त किया. और कच्चे तेल के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में इजाफा. ब्रेंट क्रूड $77.03 प्रति बैरल पर पहुंच गया. और आज की पहली खबर. तेल और गैस, ऊर्जा और स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्रों की सहायता से घरेलू शेयर बाजारों में आज बढ़त दिखाई दी. 30 शेयरों पर आधारित बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 234 अंक यानी 0.3% की वृद्धि के साथ 78,199 अंकों पर बंद हुआ. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 92 अंक यानी 0.4% बढ़कर 23,708 अंकों पर जा पहुंचा. बंबई शेयर बाजार के व्यापक बाजार ने इक्विटी बाजार के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन किया. मिड कैप सूचकांक 0.7% और स्मॉल कैप सूचकांक 1.7% से अधिक रहा.
Benchmark domestic equity indices today ended in positive territory, supported by oil and gas, energy and healthcare sectors. The 30-share index at the Bombay Stock Exchange, Sensex, gained 234 points or 0.3% to close at 78,199. Similarly, the National Stock Exchange, Nifty 50, added 92 points, almost 0.4% to settle at 23,708. The broader market indices at the Bombay Stock Exchange outperformed the equity market. The mid-cap index advanced over 0.7% and the small-cap index surged over 1.7%. In the Sensex pack, 20 out of the 30 companies logged gains. Among the top gainers, Tata Motors rose over 2.2%, Reliance added over 1.8% and IndusInd Bank gained more than 1.4%. Meanwhile, in the top laggards, Zomato slipped over 4.5%, HCL Tech lost more than 1.7% and TCS dropped over 1.6%. In the sectoral indices at the Bombay Stock Exchange, 17 out of 20 sectors ended in positive territory. Among the top gainers, energy gained over 1.5%. Oil and gas, as well as industrials, both advanced over 1.4% each, and commodities added over 1.3%. Conversely, in the top laggards, focused IT shed 0.6%, tech slipped 0.5%, and information technology dropped 0.36%. The overall market breadth at the BSE was positive. As shares of 2,625 shares advanced and 1,354 companies declined, while 107 remain unchanged. At the National Stock Exchange, 47 companies hit their 52-week high, while 71 hit their 52-week low.
और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया 11 पैसे की बढ़त के साथ 85.72 रुपए प्रति डॉलर के न्यूनतम स्तर पर बंद हुआ। छह अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती मापने वाला डॉलर सूचकांक दिन के कारोबार में 108.09 पर था। सुषमा जी, शेयर बाजार में आज बढ़त दिखाई दी, ये आपको कितना पॉजिटिव संकेत लगता है कि जो जो अभी स्तर है जिस तरह का, तो बार बार जितनी उथल पुथल हमें बाजार में दिखाई दे रही है, गिरावट होती है फिर थोड़ी सी बढ़त होती है, तो ये ट्रेंड कितना आपको अच्छा दिखाई देता है?
देखिए, ये अच्छा और बुरे की बात नहीं है अमरीश जी, ये कुछ अभी 2-3 हफ्ते ही रहते हैं हमारे सालाना बजट के लिए
जी।
और उस दौरान हमेशा ये बजट से पहले 2-3 हफ्ते ज़रूर वॉलेटिलिटी होती है स्टॉक मार्केट्स में। ये थोड़ी सी नर्वसनेस होती है कि भाई बजट में क्या आएगा। हालांकि बजट इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना पहले होता था, जबकि सारी पॉलिसीज बजट के वक्त जो आर्थिक जो पॉलिसीज होती थी बजट के वक्त ही बताई जाती थी, लेकिन फिर भी इसके बहुत माने हैं और स्टॉक मार्केट के लिए जो पॉलिसीज हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो इस वजह से हमेशा ये उथल पुथल जो आप कह रहे हैं, थोड़ा सा बढ़ावत बढ़ा 2 दिन और थोड़ा सा नीचे आया। खैर, कल तो ये जो खबर आई थी HPMV वायरस के बारे में, उससे मार्केट डाउन गई थी। लेकिन अब मेरे ख्याल आज से लेके अगर आप देखें, जब तक बजट नहीं प्रेजेंट होता तब तक ये थोड़ा सा उथल पुथल देखेंगे मार्केट में।
डू यू बिलीव दैट द FII सेलिंग दैट वी हैव सीन फॉर मल्टीपल सेशंस सो फार इज आल्सो ड्रिवन बाय अ स्ट्रॉन्ग डॉलर। इफ यू लुक एट द डॉलर इंडेक्स राइट नाउ इन द एक्सचेंज मार्केट, इट्स एट 108.109 व्हिच इज रफली एट एन ऑल टाइम हाई इफ यू लुक एट recent stock market history. How important is that when it comes to FIIs continuing to sell and create pressure in the market? There seems to be a call of sell on every rise.
Yeah. Well, I think, of course, the dollar appreciation makes a difference. I mean, dollar is strengthening. But the fact is that FIIs have been, I mean, the fact that FIIs are exiting the Indian markets is not a new phenomenon. It's been going on now for several months. And, I mean, last year, in the middle of this year, we had FIIs coming back. But now, once again, they are exiting the market. Now, the FIIs are going to go where they get the highest valuation. And market assessment is that stocks in India are overvalued, to remain overvalued even now. And therefore, they think that they're going to get better value, not just in the US, you know, look at the dollar, but they're getting better value also in other Asian markets. So this is the reported thinking of FIIs. And I think we should accept the fact that this trend is likely to continue in the days to come, and this will add to the volatility that we are, which I talked about, that we is going to continue till the budget.
What about corporate earnings? You mentioned about valuation, the price to earnings ratio is one way of looking at valuations as well. What about the price of the stock relative to the earnings per share, the outstanding shares in the market? How would you rate the third quarter earnings report so far of companies?
Well, you know, they have not been that impressive so far. And if you see the market today, the shares of the IT sector have been, down as in the IT sector. And that's because they're looking forward to the TCS corporate results. And, since corporate results have not been so bright, there is a fear that probably even TCS, which is the largest IT company in the country, may not be that good. So, yes, we have to look at the fact that demand has not risen to the extent that was anticipated during the festival season, and therefore there has been a problem as far as companies are concerned.
लेकिन सुषमा जी, अगर हम जो हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनके लिहाज से अगर आप देखें शेयर बाजार को, तो कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो आपको लगता है कि अभी आने वाले समय में अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं?
देखिए, मैंने अभी IT की बात की, IT अभी डाउन है, लेकिन IT एक क्षेत्र है जहां ये लॉन्ग टर्म, अगर आप लॉन्ग टर्म ग्रोथ की तरफ से देखें तो वो बहुत ही बढ़िया सेक्टर है. दूसरा एक है बैंकिंग. बैंकिंग हालांकि पिछले 2-3 सालों से बहुत ही अच्छा बुलिश ट्रेंड्स चल रहे हैं बैंकिंग क्षेत्र में. ऑटो सेक्टर इस वक्त बहुत अच्छा नहीं कर रहा है क्योंकि इस वक्त तो इन्वेंट्रीज पाइल अप हुई है, लेकिन वो भी अगर लॉन्ग टर्म अगर आप देखें तो उसका उसकी जो आउटलुक है बहुत अच्छी है.
और आज अगर हमने देखा जैसे हेल्थ केयर में और ऑयल में, एनर्जी में आज ये काफी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई दी, तो ये आपको कितनी सस्टेनिंग आगे आने वाले समय में लगती है?
देखिए, ऑयल एंड गैस का तो ये है कि हमारे देश में तो पब्लिक सेक्टर ही, हालांकि रिलायंस भी है पर ज्यादातर पब्लिक सेक्टर है, तो पब्लिक सेक्टर के काफी कंस्ट्रेंट्स होते हैं, पर ONGC ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया है. तो हाँ, ऑयल एंड गैस का अगेन उसका ये एक स्ट्रेटेजिक सेक्टर है और इसमें लॉन्ग टर्म ग्रोथ तो होगी.
What about capital goods? If you look at our export figures, the bulk of the earnings in foreign exchange have been from engineering goods. Would you say that it's been a sector which has really done very well, both in terms of demand in the domestic market and overseas?
Yes, engineering, of course, is a very is what you call old economy as manufacturing sector. Engineering, and as you pointed out, it is doing very well as far as exports is concerned. Value added there is very good. So engineering, capital goods is definitely an area of strength in this country. But capital goods, again, is not an area where you will get a sharp appreciation in growth. Huh?
So you mentioned about the IT index. It fell by 300 points today, the Nifty
yes.
IT index. And usually, you know, these are bellwether stocks.
Correct.
They lead the charge for what's going to happen in the market. So what would you advise investors at this stage? Because today being a Tuesday, you still have another 3 days of trading sessions left. Is it going to be continue to be volatile? Today the VIX was 15. Anything above 20 would be considered serious. But how do you see the next 3 trading sessions for investors?
I think, you can't look at, investors should not be looking on a really day-to-day basis. You should be, when you're making investments, you need to look at a more medium and long-term horizon. And therefore, I think, as I said, IT is definitely in the medium and long term is a growth sector. It may have fallen just now. There is going to be volatility in a lot of these sectors that I talked about right up to the budget. But the investors need to look at, of course, the bottom line, the profitability of the companies, but also the medium and the long term outlook for companies. And that's what is required for retail investors.
Sushma ji, aap rupay ke bare mein kya kahengi? Jis tarah jitna strong dollar is samay chal raha hai, to rupya kahan jaake
देखिए, रुपया का ये है कि अभी ही हाल ही में इसका डिप्रिसिएशन थोड़ा गिर रहा है, लेकिन 2 साल से काफी स्टेबल रहा है रुपी, और मेरे ख्याल में काफी इसका वक्त आ गया था थोड़ा सा डिप्रिसिएशन के लिए. हालांकि ये इम्प्रेशन चला जाता है कि भाई किसी करेंसी की डिप्रिसिएशन हो जाती है तो बहुत अच्छी बात नहीं है, लेकिन अगर करेंसी की डिप्रिसिएशन होती है तो एक्सपोर्ट्स में काफी फायदा मिल जाता है, एक्सपोर्टर्स को कंपेटिटिव एज मिल जाता है. चीन को ही देख लीजिए, वो युआन को दबादब डिप्रिसिएट कर देते हैं और इसी वजह से यूएस के साथ उनका इतना झगड़ा चलता है. तो डिप्रिसिएशन एक तरीका भी है कि आपको अपने आप को कंपेटिटिव बनाए वर्ल्ड में.
Let's have a look at our second headline story now. India's real gross domestic product GDP is projected to grow at 6.4% in the fiscal year 2024-25. According to the first advance estimates of the annual gross domestic product for the current fiscal released by the National Statistical Office of the Ministry of Statistics and Program Implementation today, nominal GDP has witnessed a growth of 9.7%. In the previous fiscal, the provisional estimate of GDP growth rate had been estimated estimated at 8.2%, while the nominal GDP growth rate was estimated at 9.6%. The ministry added that the real gross value added GVA has grown by 6.4% over the growth rate of 7.2% in the financial year 2023-24. Nominal GVA has shown a growth rate of 9.3% as compared to the growth rate of 8.5% in the previous financial year. The estimates highlighted that real GVA of agriculture and allied sectors estimated to grow by 3.8%, a marked increase from the previous year's 1.4%. The construction sector and the financial, real estate and professional services sector are also expected to experience strong growth. The construction sector's real GVA is projected to rise by 8.6%. Similarly, the financial, real estate and professional services sector is expected to grow by 7.3%. Sushma, before we go at this sector-wise, which have seen a bump when it comes to computing GDP, what we are seeing is that the nominal GDP is at 9.7%, in fact, but the real GDP is 6.4%. Clearly, inflation has played a very strong role in the real GDP being at 6.4%. So how do you see this challenge of inflation being tackled by the government?
Well, this is definitely a challenge. And obviously, in the past year, as you are aware, that the RBI has, has not been able to cut interest rates. There was a strong pressure from many quarters. The industry obviously wanted interest rate cut, but it has not been able to do so because of this pressure of inflation. Inflation has, especially in the area of food, inflation has been rising. Now, we have had problems in the second quarter, heavy flooding, which has affected the crops. And although we have had a very good crop as far as grains is concerned, in other areas, that is fruits and vegetables and other areas of food, there has been, sharp increases in prices. So this is an area which, is an area of concern. Hopefully, the data is now showing that this is now cooling down. So, of course, these are advanced estimates. And what will ultimately emerge, like you rightly said, this is going to be definitely inflation is going to play a big role in the final estimates when you compare the nominal GDP and the real GDP, because, the difference is inflation.
जी, लेकिन सुषमा जी, जैसे अभी हाल में खबर आई कि सरकार WPI में भी चेंजेस करने जा रही है और इन्फ्लेशन का सारा कैलकुलेशन का तरीका ही बदल जाएगा, उससे क्या कोई फर्क पड़ने वाला है, आपको क्या लगता है?
अब वो कहा ये जा रहा, बात ये हो रही है, अब क्या होगा हमें मालूम नहीं है, लेकिन कह रहे हैं कि ये फूड का जो इतना बड़ा वेटेज है होलसेल प्राइस इंडेक्स, उसमें थोड़ा सा कम होना चाहिए, क्योंकि जो कंजम्पशन बास्केट है लोगों की वो बदल रही है. एक जमाने में जो फूड का जो परसेंटेज था लोगों के कंजम्पशन बास्केट में बहुत बड़ा था, अब वो थोड़ा छोटा हो गया क्योंकि बाकी चीजों के ऊपर अब वो खर्चा कर रहे हैं. तो वो रियलिटी रिफ्लेक्ट करने के लिए ये WPI बदलने वाला है, तो थोड़ा सा बदलाव तो होगा.
Gross value added, we've seen agriculture grow by 3.8%. These are the estimates, and clearly the construction sector, no surprises there because of deregulation in that sector as well. Financial services with fintech, real estate has also picked up because they're all related. But tell us about agriculture. I understand the government is also into mega projects like linking off river projects. So you have all kinds of infrastructure to facilitate more coverage of area for the purposes of agriculture.
I think agriculture is definitely a bright spot. I mean, it has risen compared to all the other sectors which are not growing as fast as last year. Agriculture is going to grow by 3.8%. Definitely you can see that this is, you're going to have a better output, whether it is food grains, whether it is fruits and vegetables, horticulture, and a lot of investment has been made. And like you pointed out, whether it is interlinking of rivers, I think what is important is the spread of irrigation, especially to rain-fed areas. And the focus on crops like pulses and oilseeds, which are largely in rain-fed areas, And the that has certainly made a difference. So let us see what happens. But agriculture and, of course, services are one must mention. You, as you mentioned, services is an area of strong growth now in this country. I think even in exports, compared to merchandise trade, services exports are, you know, booming much more than that.
और चलते हैं अगली खबर की ओर. भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिए कस्टमर क्रेडिट सूचना के बारे में जानकारी से संबंधित विभिन्न दिशा निर्देशों को एकजुट करने का निर्देश दिया है. इन निर्देशों के अनुसार यदि संबंधित उपभोक्ता क्रेडिट सूचना रिपोर्ट को हासिल करने की कोशिश करता है तो क्रेडिट सूचना कंपनी की जिम्मेदारी है कि उसे SMS और ईमेल के माध्यम से अलर्ट भेजे. बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानों की जिम्मेदारी है कि डेटा में सुधार के अनुरोध को नामंजूर किए जाने के कारणों के बारे में भी कस्टमर को बताए. सुषमा जी, आप क्या कहेंगी? काफी कस्टमर फ्रेंडली तरीका है.
जी बिल्कुल
जी.
अब ये जो क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट है ये बहुत ही क्रूशल है. अगर किसी ने ऋण लेना हो तो वो क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट के बेसिस पे ही उनको मिलता है. तो जो कस्टमर है उसको जानकारी होनी चाहिए कि अगर किसी बैंक या किसी एजेंसी या किसी इंडिविजुअल ने उनका क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट लिया है, क्यों लिया है. तो ये जो चीजें हैं ये थोड़ी ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए सिस्टम में.
जी. इन मोर न्यूज, यूनियन रोड ट्रांसपोर्ट एंड Highways Minister Nitin Gadkari today chaired a meeting of transport ministers from all states and union territories at the Bharat Mandapam in New Delhi. In a social media post, Mr. Gadkari said that this annual gathering serves as a vital platform to foster synergy between the union and the state governments, facilitating collaborative deliberations on critical policy matters and advancing cohesive strategies for national progress. He added that such dialogues are essential for addressing regional challenges, sharing best practices, and ensuring the uniform implementation of transformative transport policies across the nation. Briefly, just give us your views on the national logistics policy which is being promoted by the Ministry of Commerce and Industry and the role also of DPIIT in this.
Mm-hmm. Well, I think the fact that they are having a meeting of all the state transport ministers is important because there needs to be a lot of collaboration between the centre and states, because the centre is in charge of major highways, you know, but the states are in charge of tackling the roads within the state itself. And those are very important. The smaller roads, the rural road system, that entire network is very, very critical. But there must be synergy over there. And that's where you talked about the Department of Industry. You know, you need to bring in corporates as well so that there is a coordinated approach in this.
जी, और चलते हैं अगली खबर की ओर. इस्पात मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग पर एक कार्यक्रम आयोजित किया. इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य इस्पात उद्योग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की परिवर्तनकारी क्षमता का पता लगाना था. इस अवसर पर इस्पात मंत्रालय के सचिव संदीप पौंड्रिक ने इस्पात क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग कौशल को लागू करने की आवश्यकता पर बल दिया. उन्होंने कहा कि ये सरकारी संगठनों द्वारा एकत्र किए गए विवरण के विश्लेषण में मददगार साबित हो सकते हैं. और देश की फॉर्म टू फोर्क व्यापार प्रदर्शनी इंडस फूड 2025 30 से अधिक देशों के 2300 से अधिक प्रदर्शकों की भागीदारी के साथ कल दिल्ली NCR में शुरू होगी. केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान महोत्सव के 8वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे. इस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी में 7,500 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय खरीदार भाग लेंगे, जबकि 15,000 भारतीय प्रदर्शनी देखने आएंगे. यह प्रदर्शनी नेटवर्किंग के अवसर उपलब्ध कराएगी, व्यापार विस्तार में सहायता करेगी और ज्ञान आधारित सत्रों के माध्यम से बाजार के बारे में बेहतर समझ बनाएगी. सुषमा जी, एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रदर्शनी है और इसमें काफी तरह के फायदे हैं, क्योंकि जो खाद्य संस्करण उद्योग है वो हमारे देश में बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है. एक ये प्लेटफॉर्म है जहां पर जो खरीदार हैं बायर्स हैं और जो उसको बनाने वाले हैं वो दोनों ही एक लेवल पे हैं. आप क्या इसमें जोड़ना चाहेंगे?
देखिए ये हमारे देश में ये पहले एक जमाने में इतने रेस्टोरेंट्स नहीं होते थे. हाँ अब इसमें शेफ्स का भी पार्टिसिपेशन है. अब आजकल जो मीडिया में कहानियां हैं कि भाई ये बहुत बड़ा शेफ है, रेस्टोरेंट की बात नहीं करते लेकिन शेफ की बात करते हैं, शेफ के ने 3 रेस्टोरेंट में बात. ये बहुत अच्छी बात है. हमारी महिलाएं शेफ्स भी हैं, वो भी बाहर जाके वो बहुत नाम कमा रही हैं. तो ये जो है ये फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र में हम बहुत आगे चल गए, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो गया फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में. तो ये जो रेस्टोरेंट्स और शेफ्स की मैंने बात की ये सिर्फ एक पहलू है उसका, लेकिन जो दिखाई देता है बाकी तो बहुत बड़ा बन गया है ये.
Moving on to the US stock market, US stocks displayed mixed trend yesterday. NASDAQ composite surged over 1.2%. S&P 500 gained over 0.5%, boosted by a rally in semiconductor stocks. Meanwhile, the Dow Jones Industrial Average ended marginally down by 0.06%. Sushma, with Donald Trump as the new president and the outgoing President Biden, how do you see the markets reacting to this transformation, and what's the likely benefit that President Trump will bring to sentiment in the stock market?
Well, I think the stock markets will welcome Trump because in his previous tenure, he did usher in an era of even greater economic prosperity. It's not that during Biden's era there has been less, though during the elections there was a perception that, you know, Americans are not doing so well. But actually, America has been going, the U.S. has been going through an era of, despite the pandemic or even through the pandemic, it is one of the let's say an outlier economy that has been doing well, you know, the US, Japan, and probably India, you can say, where growth rates have been good. So Trump is seen as someone who, at the time when he was president, is seen as someone who has supported industry, supported corporates, supported the tech sector. Now, of course, he is going to support even more with his advisor Elon Musk. So I think the stock markets are probably going to rally when he comes on board.
Aur chalte hain Asia aur Europe के बाजारों को हाल जान लेते हैं. एशिया के 5 प्रमुख शेयर बाजारों में से 4 में आज बढ़त दिखाई दी. जापान में टोक्यो शेयर बाजार का निकेई 1.9% से अधिक बढ़ा, जबकि चीन के शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में बढ़त 0.7% की रही. सिंगापुर के स्ट्रेट टाइम्स इंडेक्स में 0.17% और दक्षिण कोरिया के कोस्पी में 0.14% की बढ़त दर्ज की गई. उधर हांगकांग शेयर बाजार का हैंगसेंग इंडेक्स 1.2% से अधिक गिरा. यूरोप के शेयर बाजारों में मिला जुला रुख रहा. फ्रांस का कैक 0.5% से अधिक और जर्मनी का डेक्स 0.3% तक बढ़ा. अंतिम समाचार मिलने तक लंदन के फुटसी में 0.22% की गिरावट चल रही थी.
Moving on to the oil market, oil prices rose today amid concerns regarding tighter Western sanctions on Russian and Iranian supply. Brent crude was trading at $77.03 per barrel, adding nearly 1%. WTI crude also gained over 0.7% to trade at $74.13 per barrel, according to latest reports. Very briefly, for this calendar year, do you expect oil prices to come down with weaker Chinese demand?
Well, it looks, I mean, just now, of course, you've seen prices go up to 77, but that's really very unusual. They have been hovering at $73 or $74 per barrel. And it looks as if they will be at that range. I don't expect them to cross $80 this year.
जी, और चलते हैं सराफा बाजार का हाल भी जान लेते हैं. सराफा बाजार में सोना आज बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था. अंतिम समाचार मिलने तक भारत में 24 कैरेट सोना 0.4% बढ़कर 77,750 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर था. वहीं चांदी 0.78% बढ़कर 91,400 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर दर्ज की गई. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अंतिम समाचार मिलने तक फरवरी 2025 में आपूर्ति किए जाने वाले सोने का वायदा मूल्य 0.41% बढ़कर 77,475 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा था. वहीं मार्च 2025 में आपूर्ति की जाने वाली चांदी का वायदा मूल्य 0.86% बढ़कर 91,333 रुपए प्रति किलोग्राम पर चल रहा था। और चलते हैं कार्यक्रम की समाप्ति की ओर। सुषमा जी, इस कार्यक्रम में भाग लेने, प्रमुख खबरों पर चर्चा करने और श्रोताओं को बहुमूल्य जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू अम्बरीश।
And before we close, a reminder of the headlines. Benchmark domestic indices end in positive territory. Sensex adds 234 points. Nifty closes above 23,700. National Statistics Office projects India's real GDP to grow at 6.4% in the ongoing fiscal year. And global crude oil prices rise. Brent crude trades at $77.03 per barrel. And that's it in this edition of Market Mantra for now. Goodbye. Market Mantra.